तप्त मानस संत हूँ, जिनके गुणों के ज्ञान में ते वर्धमान महान जिन मित्रे हमारे ध्यान। नंबर 5 में डालो, तीन प्रकार के वर्गीकरण टीकाकारों के दिमाग में रहे हैं, जिनकी चर्चा अपन ने अभी यहां की। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन और चरणान योग सूचक चूटिका। दूसरा सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और कार्यत्राधिकार। और तीसरा देव शास्त्र गुरु, ऐसा भी उनके दिमाग में रहा है और उसकी अपन ने चर्चा विस्तार से की। देखो, जो अपनी देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, उसमें भी जयमाला छोटी सी लिखनी थी, तो उसका भी दिमाग में प्राणायाम हुआ तो उसमें प्रकट हुआ है। वो उसमें जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार मेरे ग्रंथ गुरु करे कर्म की, समय सार जिन देव है, तो वहां भी देव शास्त्र गुरु तीन की पूजा अपन करने खड़े हुए हैं। तो तीन महाशास्त्र, समय सार, प्रवचन सार और नियम सार को ध्यान में रखा। भगवान की भक्ति करना हो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करेंगे ना, तो भी देव शास्त्र गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझाएंगे तो भी देव शास्त्र गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। जिन मार्ग के प्रतिपादन की पद्धति बताएंगे तो भी देव शास्त्र गुरु की चर्चा करना पड़ेगी। माने कई तरीके से लौट फिर करके हम यहीं आ जाते हैं। माने जो विषय वस्तु आपको इस प्रवचन सार में बताई गई है, वो विषय वस्तु अनेक प्रकार से मोक्ष मार्ग ही है। माने रत्नत्र ही है, सच्चे देवसाध गुरु ही हैं। अब इनको आप देखो, करीब 4 परिभाषाएं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन की उनने बताई, तो उन्होंने यही स्टाइल था भाई, तत्वार सिद्धानम सम्मा दर्शन, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्मा दर्शन है, आत्मानुभूति सम्मा दर्शन है, मतलब ऐसे ही लिया ना, और स्वपर सिद्धांत सम्मा दर्शन है भेद विज्ञान। तो वही अब आप उनसे मिलान करके देखो तो वही 4 अध्याय आ जाएंगे। मैंने वही विषय वस्तु को हर आचार्य बताना चाहता है, वो ही उतना ही मोक्ष मार्ग है। कहीं से भी आए वो लौट कर वहीं आ जाता है। और टोडर मल जी को जो उपलब्ध था उनको उन्होंने यहां पर, वो किस तरह से कोई 4 रास्ते नहीं है, 4 मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि ये कई है, 4 सम्मा दर्शन नहीं है बल्कि ये कई है, और किस तरह वो 4 प्रकार से कहा गया है, 4 प्रकार से कहने का हेतु क्या है। ऐसा नहीं है 4 जब जिसको जो मिला तो उसने कह दिया। उनको श्रावक का धर्म बताना था, व्यवहार धर्म से जो श्रावकाचार है वो समझाना था। तो उन्होंने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को समझाया समझा। मैंने उसमें कोई समझदार वो होगा तो वो बताएंगे कि ये पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं, उतने से ही जान लेंगे क्या कि पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं। अब यदि तत्वार सिद्धांत और सम्यक दर्शन लिखेंगे तो ये पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं। अब पढ़ो, पहला दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। दूसरा इसलिए कहता हूं कि पहले में मंगलाचरण लिख देते हैं बहुत से लोग, तो वो शुरू में अपनी बात प्रकारांतर से कह देते हैं कि मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। समय सार में सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की मुख्य उद्देश्य से बात करी थी तो निबंधित तू शब्द सिद्ध कह दिया। इन्हें पूरे मोक्ष मार्ग की स्वरूप की बात करी है, समझे ना, तो इन्होंने पांच गाथाएं मंगलाचरण में ले ली। अब पांच गाथाएं क्यों ले ली, कैसे ले ली, वो तो चर्चा अपन आगे जब प्रवचन करेंगे तब करेंगे, लेकिन उसके पहले तीन गाथाएं मंगलाचरण के छंद अमृतचंद के भी हैं, तो उनकी भी अपन को बात करनी है। फिर आ गया ना गाथाओं का नंबर, तो आज अपन ये पूरा कर देंगे। तो यहां ये कहते हैं कि अपने तीनों की कॉमन बात अलग अलग हो गई, देवसागर क्यों रखा, ये क्यों रखा, ये क्यों रखा, ये सब बात कह दी। अब ये दूसरा पैरा निकालो पांच पेज का। इस प्रकार देवादि देव महाधिकार शास्त्र महाधिकार और गुरु महाधिकार के रूप में भी वर्गीकरण किया जाना अयुक्त नहीं है। पूरे नाम जो अधिकार तो रखे ही है, बच्चों के बीच बीच में छोटे छोटे अधिकार होते हैं, तो अपने आप महाधिकार लिखना जरूरी हो गया। और फिर जिसमें जो बताना है वो लिखना है, तो देव का स्वरूप बताना है तो देव और देवादि देव, इस तरह से उन्होंने ये नाम रखे हैं, तो वो सार्थक नाम हैं। फिर भले ही अपन देवाधिकार ऐसे इतना ही बोल रहे हैं, इतना ही बोलेंगे तो फिर एक महाधिकार में देवाधिकार नाम का यह अधिकार अलग है, तो फिर नया भ्रम खड़ा होगा, इसलिए पूरे ही बोलें वही अच्छा है। हो गया इस श्रुति स्कंदों के नाम से। अभी चौथा एक और चक्कर है, प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद, इसके नाम से भी चर्चा होती है शास्त्रों में। जनवाणी का बंटवारा चरणानियोग प्रथमानियोग करणानियोग के नाम से होती है ना, तो ऐसे इस नाम से भी होती है प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद। तो हमें प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय स्कंद में बांटे हैं, तो इनका बंटवारा कैसे होगा? तो उनमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सबसे पहले है, ज्ञान असम ज्ञान अधिकार जिसे अपन कह रहे हैं, तो उसको ये प्रथम श्रुति स्कंद कहते हैं। जय धवल वगैरह है ना वहां, तो उसे प्रथम श्रुति स्कंद कहते हैं, और साथ में द्वितीय कहते हैं ना, कैसा है? हाँ, प्रथम सार को द्वितीय कहते हैं, द्वितीय श्रुति स्कंद, और उसको बोलते हैं कर्म की कथा को प्रथम श्रुति स्कंद। तो ये पहले नंबर पर जिसको लिया ना, तो उन्हें प्रथम श्रुति स्कंद की कहानी, इसमें तो उल्टा पड़ेगा ना। और द्वितीय श्रुति माने अध्यात्म को वे द्वितीय श्रुति स्कंद कहते हैं। जो बताया था पहले कि प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन माना प्रमाण व्यवस्था, और ये तत्व प्रज्ञापन माने प्रमेय व्यवस्था, लेकिन समय सार में ऐसा कुछ है नहीं कि इस टाइप का वर्गीकरण निकाल सके हम। वहां का एक सम्य दर्शन की मुख्यता से, आत्मानुभव की मुख्यता से, पहले छठवीं गाथा में प्रमत्व भी नहीं है और अप्रमत्व भी नहीं है, यहां से शुरू कर देते हैं। उनको कहां से शुरू करें ये समस्या ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनका श्रोता, उनका पाठक, उनका शिष्य, तो वो जो जिनवाणी उपलब्ध है वो सबको पढ़ा, एकदम अप टू डेट तैयार बैठा है। है? तो कहीं से भी बात शुरू करेंगे तो उसकी समझ में आएगी। अब ये कह दो कि क्या पढ़ के आना चाहिए समय सार पढ़ने के लिए, पहले ये कहेंगे पूरा जना हम पढ़ के आना चाहिए है? और ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं, समय सार के वस्तु विषय वस्तु को जानना है तो क्या पढ़ के आए, कौन सी डिग्री लेके आए, बोलो तो कुछ नहीं, आ जाओ तुम और हम करेंगे बताएंगे समझाएंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि उसका कोई स्टाफ का बंटवारा नहीं है, क्या उसको हम ऐसा बांट सकेंगे इस तरीके से। और आप देखिए पहले अभी हम बढ़ाते जा रहे हैं कि नेता हो चुनाव में खड़ा हो तो बीए होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ तो गांधी नेहरू के लिए ऐसी कोई शर्तें नहीं लें, किसी ने नहीं नेहरू की डिग्रियां नहीं देखी, गांधी जी थर्ड डिवीजन पास हुए थे ये भी किसी ने नहीं देखा। छोटे बड़ा माना समाज ने तो गांधी जी बड़े हैं, माना या नहीं माना। उस वक्त एक कोई बोझ नहीं थी, अब दुर्भाग्य से वो क्वालिटियां तो रही नहीं है कि जिन क्वालिटी के सामने इन चीजों को नहीं देखा जाता है। अब बाकी की बातें रह गई तो इसलिए फिर उन्होंने बे लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इनका तो सर्टिफिकेट कहीं मिलता नहीं है, उनका सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट लेके आओ, है ना। वो तो उसका जीवन ही सर्टिफिकेट था, तो सर्टिफिकेट उसे दे पड़ता जो कुछ मांगता है। उन्हें कुछ मांगना ही नहीं था, उन्हें तो देना ही देना था, उन्हें कोई पद चाहिए नहीं था कि इसकी वजह से अपने कहेंगे तुम डिग्री दिखा के लाभ और लैंड में खड़ा करो। देखो जो देश को चलाने वाले हैं ये अंदर की इतनी सी मांग ने उनको लैंड में खड़ा कर दिया। क्या समझ रहे हैं कि कितनी कि मैं देश की सेवा करूं इस पोस्ट पर बैठ के करूं, तो कह दे फार्म भरो, चुनाव होंगे कुछ भी होगी लेन से आइए। वो तो सामान्य सा क्लर्क उसे लेन बताता है, और उनको लेन से आना पड़ता है कि नहीं, वो लेन में लगा देता है। महात्मा गांधी को किसी ने लेन में लगाया था, नहीं लगाया था। देखो अब यद्यपि तात्पर्य वृत्ति में एक आध दो लाइन छूटती है तो फिर मरम पूर्ण बात छूट जाती है। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को पातनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया ही है। जानते हो पातनिका नाम पहली जगह संदेह हो गया कि पहले अध्याय में हम क्या करेंगे ये बता रहे, फिर दूसरे में क्या देंगे, तीसरे में क्या देंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले अधिकार में भी फिर सबसे पहले क्या देंगे, कितनी गाथाओं का ग्रुप देंगे कि पांच गाथाओं का ग्रुप देंगे तो उसमें क्या करेंगे कि मंगलाचरण करेंगे तो उस मंगलाचरण में क्या करेंगे, पहले अरहंत भगवान का कहेंगे फिर सिद्ध का करेंगे फिर विदेशी त्योहारी अरहंतों का करेंगे, तो ऐसे सब बताते जाते हैं। वो माने वो कम से कम 100-200 दफे बताते हैं, हर एक निकालते हैं हिस्सा कि इतने हिस्से पर मैं व्याख्यान करूंगा तो उसमें भी हम क्या देंगे वो सब बता देते हैं। अपनी किसी किताब में स्टार का किया है, प्रशिक्षण निर्देशिका में है कि अभी पहले पाठ में ये बताया था और इस पाठ में ये बताएंगे, वो अध्यापक विद्यार्थी को कहता है, उसने ये सब बात बताई ना। देखो सारी चीजें कुंड कुंड की उसमें उनमें आ गई, उन आचार्यों की माने जो मैं विज्ञान के विकास में जो चीजें आई हैं वो उनकी उन पद्धतियों में मिलती हैं। जब जब जैसे ना चाहते थे वो आई थी तो उनको बराबर बताना, हर दफे बताना, हर दफे बताना, किसने सम्मत दर्शन करेंगे फिर 20 गाथा में समर्थन करेंगे, फिर 3 में ज्ञान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 20 में 6 में ये करेंगे, ये करेंगे, फिर 6 में 2 में ये करेंगे, 4 में ये करेंगे, ऐसा वो बताते जाते हैं। उसको बोलते हैं पातनिका, और उस पातनिका को भी है ना कई नाम देते हैं, आद्य पातनिका, मध्य पातनिका, इसको भेद करते करते बहुत ये करते हैं। आप जानते हैं जिन्होंने सिद्धांत कोष देखा ना आपने, ऐसा ऐसा खोल कर भी देखा होगा, कितने प्रकार के टायर थे उसमें, समझे क्या पूछ रहा हूं, वो छपा है तो उसमें कितने प्रकार के टायर हैं, ये पेज है ना अपना, इसमें कितने प्रकार के टायर हैं, देखो अभी देखो तुम्हारे सामने ही है, चार तरह के हैं ना, और लोग देख लो भाई कहा, कौन सा पेड़ देख लो, पांचवा छठवा चौथा किसी ने देखा था। तो मैं इसलिए कहूँ कि मैं मेरे सामने जो खुला है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, पांचवा पेड़ देखो आप दो तरह के, तो ऐसे टायर जिन्हें सिद्धांत कोष में छह तरह के। अब ये जब हम किताब का पहला पेज छपने को देते हैं, समझना, उस दिन हमें ये नक्की करना पड़ता है कि हम कितने प्रकार के टायर देंगे, और वो नक्की कब होता है, जब वो अंतिम उसका पेज छपता है तब तब तक। क्यों अंत कैसे होगा, क्योंकि जब हम कोई सूची ऊंची बनाएंगे वहां सुरक्षा वहां बदलने टायर, और टायर बदलते हैं वो भी किसी कारण से बदलते हैं, समझिए ना, क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे अपन ने ये पांचवा पेज देख रखा ना सामने, तो जो रनिंग मैटर चल रहा है वही टायर में ये पृष्ठभूमि भी लिख देते, तो वो कंपोज करने वाला ये करने वाला कोई भी गलती करता और प्रतिपाद देवाधिकार होने का अधिकार है पृष्ठभूमि ऐसा पड़ता उसके बीच में, उसे छोड़ता नहीं, केवल तो सिर्फ उन्हें देखने के लिए छपा है, उसे अभी मुंह से पढ़ना नहीं है, वो उसका अलगपन दिखाने के लिए, फिर उसका छोटा बड़ापन दिखाने के लिए छोटा बड़ा टाइप करते हैं, उसकी इस पेज में क्या हैसियत है ना, ये भी बताने हमको इसी से बतानी है, जैसे क्या है क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी उस टाइप से हमें बताते हैं कि साहब इसने एक ब्लैक कर दिया, व्हाइट कर दिया, और ये करके फिर एक इटैलिक कर दिया, और ज्यादा इम्पोर्टेंट बतानी है तो इटैलिक कर दिया, फिर और ऐसे कर करके वो उतना पना उसमें से हमें बताते हैं, जो भाषा में नहीं लिखते हैं और उससे बता देते हैं, और जो उसकी निगाह वाला होता है वो एकदम समझ में आता है, बाकी के पढ़ते चले जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है वो है। आप प्रेस में जाएंगे होंगे जी, अभिनंदन जी एक किताब जयपुर प्रिंटर्स में दे देना कि छपने में जाएंगे, तो आप जाओगे लेने के लिए वहां पर, तो उसे दोगे किताब ने भेजी है किताब छपने, तो वो मानो क्या कहेगा कि कितना टायर में से कौन सा टायर आएगा, 16 नंबर 18 नंबर 15 नंबर आप जानते ही नहीं हो, हैं ठीक है आपने टायर पूछ जाओगे अगली जगह में, फिर वो जाएगा मेजर क्या रहेगा कि मेजर क्या बताए, मैंने इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, लंबाई क्या रहेगी पेज की, एक एक पेज का ये सब तय होता है, ये सब पहले दिन बताना पड़ता है, नक्की करता है कि जिसकी किताब से पढ़ी उसकी, और वो प्रेस वाला पूछता है, और वो नहीं पूछे वो प्रेस वाला नहीं, आप समझे ना, और जो नहीं बताए वो किताब लिखने वाला नहीं, ऐसे कार्य हमारे कुछ भी लिख दिया अब ये छाप देना, और उसने कुछ पूछा नहीं, तुमने कुछ बताया नहीं, तो कैसा छपेगा मेरे बात की याद है, एक पेज में एक लाइन कहां से छपी कोई नक्की नहीं है, कोई यहां से कोई यहां से कोई यहां से कोई कौन सी टाइप में कौन है, वो जो बिल्कुल फोर्थ क्लास का वो कंपोजिटर होता है कहां कर दे, वो करकरा कर देता है, मेरी भी छप गई तेरी भी छप गई कुछ पता नहीं है, अभी हम उसे पूछे कौन सी चार्ट में छापी कौन सा किया कह दिया इसने क्या किया, तो कुछ नहीं किसी को पता, मैं इनमें भी बहुत चीजें सीखने की हैं, नहीं देखा क्यों होता है कि आप यहां पर वो बना देते हो मानना, फिर आते हैं नरेंद्र कुमार जी और पूरा तोड़वाते हैं, ये पलंग मांगी करो ये चार इंच पीछे करो फिर इधर लगाओ फिर इधर लगाओ, क्यों करते क्या नहीं करते हो, तो कुछ उसमें होता है आप क्यों माथा खराब करते हो, क्या फर्क हुआ, भगवान तो ऐसा करते नहीं, जैसे भी बैठा लोगे बैठ जाएंगे, कि नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, हमको चार दर्द समझना पड़ता है कि आप समझते नहीं होता कि नहीं होता। हर एक के दिमाग में वो सहज होता है, होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। देखो यहाँ अब मैं वो ही बता रहा हूँ कि सब चीजें जो लिखी हैं शुरू में कि इसमें ये सब नक्की हुआ है क्या पेड़ बदल गया, पांच पांच इंच जगह है। पातनिका के रूप में देते हैं, पातनिका सब अभी याद रहेगी। पातनिका एक सिद्धांत और समझ लो कि हमको मुफ्त में ही तुमको यही पातनिका के प्रेम लगाते हैं। ये विज्ञान है, भाषा विज्ञान, कि किसी भी शब्द पर किसी भी पंक्ति पर आप जितना समय लगाएंगे वो उतनी पक्की याद हो जाएगी। अब हम आपसे कहते हैं कि आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि कम से कम दो मिनट लगाएं एक पेज में तो आपको वो पेज का विषय अच्छी तरह ख्याल में आएगा। एक की ऐसी है कि एक मिनट में ही ख्याल में आता है, एक की ऐसी है पांच मिनट लगाए तो ख्याल में आता है। बिल्कुल यहां ये 100 आदमी बैठे हैं तो 100 की बुद्धि बिल्कुल अलग अलग है, उसकी परसेंटेज है। अब हम अध्यापक क्या करते हैं कि एवरेज एक पेज में 5 मिनट लगाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, 5 मिनट से कम लगाएंगे तो वो निकल जाएगा, फिर उसी समझ में नहीं आएगा। तो वो किसी न किसी तरकीब से 5 मिनट लगाएगा उसी पेज में, नया विषय शुरू नहीं करेगा। अब वो पढ़ा जाता है 2 मिनट में तो एक दफे तो रिपीट उसे करना ही है क्या? आप समझे? और ऐसे करेंगे वो ना समझो कि तुम रिपीट कर रहा है, लेकिन वो उतना समय उसमें लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए। तो उसी एवरेज से ये होता है कि वो बताते रहते हैं, चलते रहते हैं आगे लोगों के, और इसीलिए पाठ करने के लिए कहते हैं। इसी के लिए अन्ना जी, दीपक भाई, ये लोग आपको पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर अर्थ बताते हैं, फिर अंत में फिर गाथा पढ़ते हैं। वो सब उसी सिद्धांत के अंतर्गत है कि आपका दिमाग में बिल्कुल वो सेट हो जाए, फिर इस तरीके से कहेंगे कि इस तरह की संबंध संघ का स्वरूप बताया, अब सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, है ना। हालांकि उसमें लिखा है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन वो ये कहेंगे, इतनी बात कहेंगे क्योंकि उसे इतना समय लगाना है कि इसमें एक क्रमिक विकास है और वो अध्यापक को बताने की ड्यूटी होती है कि अब इसमें कहा कि कोई की कोई बात कह दी, वो समय लगाने के लिए बात कही जाती है। देखो तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को पातनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया है, यानी वो इतनी दफे दोहराएंगे कि तुम भूलन जाओ तो नहीं भूल सकते, बार बार बताएंगे अपने अभी तक ये कह दिया अभी आया, अभी कह दिया ये आया, अभी ये कह दिया ये आया। अभी अपने समय सारण शीलन में देखना, हर गाथा में शुरू में ये बताया जाए कि अभी तक ये कह दिया, अब ये कहेंगे पिछली गाथा में ये कह दिया, अब अगली गाथा में उसका एक तारतम्य बताते जाते हैं। बिपिन जी बहुत से लोग ऐसे थे हैं अभी समय सार, समय सार तो मोतियों का हार है। क्या कहना चाहता हूं मैं, मोतियों का हार है या बहुत प्रशंसा कर रहा है? अरे वो निंदा कर रहा है, मोतियों का हार है माने उसका एक एक मोती अलग है, पिछली गाथा का पुरानी गाथा से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? मुक्तक माने जैसे ये है तो इसका इस मोती से भले ही ऐसा रखा है लेकिन वो उससे जुड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, ये कहना चाहता है। उसे मुक्तक काव्य बोलते हैं। और ये होता है प्रबंध काव्य कि जो पहले से दूसरी पंक्ति, दूसरे से तीसरी पंक्ति जुड़ी है, कई जगह तो दो दो अक्षर भी जुड़े होते हैं, है ना, ऊपर की पंक्ति से लेना पड़ता है तब अर्थ निकलता है। बता सकते हो कोई ऐसा काव्य तुम लोगों को याद है? उसमें पूछ रहा हूं, भक्तांबर का पहला दूसरा काम एक का अर्थ ही नहीं हो सकता, दो छंदों का मिलके ही अर्थ होगा, सम्यक परिणाम में। दूसरा छंद कहां से शुरू होता है? सम्यक परिणाम में, अच्छी तरह नमस्कार करके। तो किसको कौन ये सब कुछ बताया ही नहीं है, और आधे आधा वाक्य से शुरू कर दिया। तो पहले से मिलाओ भक्ति, जो हमारे मन देवता जब भी चरणों में नमस्कार करते हैं, जो पूरा अर्थ है ना, उनको अच्छी तरह नमस्कार करके अब मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करता हूं। तो उसे उदीजे वहां युगम लिखा रहता है कि दो छंद का एक साथ अर्थ करो। अब अन्वय करते हैं, अन्वय अन्वय इति का जो है ना, पांडे राजमन जी की अपने बात करी थी ना कि खंडान्वयी टीका है, उसका अर्थ बताया था ना उस दिन, खंडान्वयी का खंड खंड कैसे आपको खंडान्वयी टीका लिखना ऐसा समझ के सोचना चाहिए कि फिर मैं क्या करूंगा खंडान्वयी टीका लिखने के लिए, कि ये टीका मेरी खंडान्वयी नहीं है कि खंडान्वयी है, ये कैसे निर्णय करूंगा, जानना तो पड़ेगा हमें। तो अपन जब पढ़ते थे तो अन्वय करवाते थे उनकी, अन्वय माने पद्य का हमने दोहा पढ़ा तो जो गद्य में वो पद्य में है ना, तो छंद के अनुरोध से क्रिया पहले आ गई, है पहले आ गया, है ना, नाम बाद में आ गया, कर्ता बाद में आ गया, गद्य जैसा क्रमिक नहीं आता है कि मैं रेलवे स्टेशन जाता हूं अब वहां रेलवे पहले आ जाएगा, जाता हूं सबसे शुरू में डाल देंगे, मैं अंत में कह देंगे मैं, तो वो कहता है पद में तो उसे अन्वय करके हम सीधी गद्य में कर देते हैं, तो वो अन्वय हो गया। और वहां लिखा भी रहता था पहले कि ये अन्वय भावार ऐसा लिखा रहता अन्वयार्थ, तो अन्वय अन्वयार्थ क्या है, और खंडान्वय अब उसमें कितने वेद निकल गए, वो अन्वय बाद वितरिक वाला अन्वय वितरिक अलग है, वो नहीं है इसमें। तो अन्वय तो वो हुआ कि हमने सीधा गद्य में कर दिया, ये अन्वय हुआ। अब खंडान्वय के पूरा वाक्य लिख दिया ऊपर गद्य में, फिर लिख दिया पद्य में और फिर गद्य में, और फिर एक एक हिस्से का अर्थ अलग अलग लिखा, उसे बोलते खंडान्वय। ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि संस्कृत में जीरो ही नहीं पड़ा आज तक, अब भक्तांबर का भी याद कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जरूरी है, वो तो धर्म है, वो तो हर माता बहन को याद होना चाहिए। यदि माता बहनों का बस चले तो पेट में ही सिखा के भेजती, असमर्थ आया चाहे नहीं आए, लेकिन वो याद होना चाहिए। तो वे बेचारे को समझते नहीं है तो उनको पूरा पद रटा देते हैं, गद्य भी रटा देते हैं। तो उन्हें इस छंद का अर्थ ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन इनमें से कौन से शब्द का अर्थ क्या है ये मालूम नहीं पड़ता, समझ ना क्या दिक्कत तो रोजी ना भोगते होंगे। बोलू बोलू समझ में आया कि इसका ये तो वो बताना एक एक खंड करके करके कर, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का, उसको बोलते खंडान्वय। तो बीच बीच में वो कोष्ठक बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक लगा लगू करके और वो छापते हैं ना ब्लैक व्हाइट करके, क्यों अजा दी देखा होगा आपने किताब में, जो दो पंक्तियों के नीचे ऐसा छपा रहता है, कभी सोचा कि ये क्या चक्कर है? वो खंडान्वय टीका है, कलश टीका में देख लेना उठा के ऐसी होगी। अब अपने भी बता देते हैं हमने क्या किया है। पहले तक रतन का सरकार छपा होगा सर, तो उसमें वो खंडान्वय तक छपे होंगे। हमने कहीं खंडान्वय नहीं दिया, सिर्फ अर्थ दिया और वो अन्वय भी नहीं दिया संस्कृत का। तो पांच सात लेने तो इसकी हो जाती है, पहले अन्वय खंडान्वय, फिर भयवार्थ, फिर फलाना, फिर ये फलाना फलाना, ये हमने ये सब खंडित कर दिया। देखो और एक बात बता दूं इसकी, पाटनी जी पहले थे ना सोनगढ़ में, जितनी भी किताबें छपती थी तो उसमें हरेक में हेडिंग लगाना, तो एक एक पेज में तीन तीन हेडिंग लगाना उनकी मैंने पद्धति, जितने अधिक हेडिंग होंगे तो वो समझते थे उतना अच्छा अर्थ समझ में आता है। तो मैं कहते ऐसा नहीं है पाटनी जी, इसमें भी कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना ये अलग है। मेरी दो किताबें बताओ आप जो दोनों तरह की पद्धति में छपी हैं। मैंने तो लिखने के पहले भी सोची होगी बात, अरे किरमत पर आया है तो उसमें कोई हेडिंग बीच में नहीं है, मैं दो हेडिंग है पूरी किताब में, पहला अध्याय दूसरा अध्याय है ना, प्रश्नोत्तर खंड और अनुशीलन खंड है। तो मैंने लिखा है उस किताब में, आपने पढ़ा नहीं है कि ये क्यों नहीं लगाते हो हेडिंग, हेडिंग लगाने से बार बार विषय टूटता है। आप समझे, हमको विषय को तोड़ना, एक फ्लो में नहीं है बात, इसलिए हम ये हेडिंग हैं जैसे कि रोड पर वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं ड्राइवर लोग जानते हैं, स्पीड ब्रेकर, तो पूरे हाईवे पे बढ़िया स्पीड ब्रेकर लगा दो तो बहुत धीरे गाड़ी चलेगी, एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो तुमको ऐसे कर लो ना कि फिर चले ही नहीं, नहीं? स्पीड को ब्रेक नहीं करना है, इसलिए तो हाईवे बनाए हैं। तो वो बीच बीच के हेडिंग लक्ष्मी स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, वो हमें नहीं डालना है उसमें, और डालने तो कहते जो दू कहीं डाल दो चौराहे मोराहे पे, तो हर गली में हर चार कदम पे स्पीड ब्रेकर, हर का चार कदम पे स्पीड ब्रेकर, तो वो रोड अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे ही इतना डाल दो। तो हमने तीनों किताबें में निकाल के बता सकता हूं कि इसमें वो पहली पद्धति अपनाई है स्पीड बिना स्पीड ब्रेकर की, इसको फ्री वे बोलते हैं, समझिए ना। फिर ये दूसरी पद्धति अपनाई है जिसमें स्कूल हैं, बच्चे हैं, घर हैं, भीड़ भाड़ का एरिया है, तो उसमें गली गली में स्पीड ब्रेकर डाल दो, बिल्कुल दस दस की रफ्तार से गाड़ी जाए, तो ऐसे पेड़ डाल देते हैं जैसे वो पाटनी जी की किताबों में डले होंगे और भी डले होंगे कई किताबों में, सोनगढ़ से छपी हुई पहली किताबों में। और एक ऐसे होते हैं कि ना तो एकदम के बिल्कुल ही नहीं डालने, और ना ऐसा कि मध्य के बड़े उन्हें डालें, तो मैं उन तीनों किताबें आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आपके सामने तो रखी थी ना आज तक, क्योंकि किसने छिपाई थी, लेकिन ऐसा भेद आपने समझा था कि इस किताब में स्पीड ब्रेकर है और इस किताब में स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्या तकलीफ है साहब, अच्छा समझ में आ जाता ना जल्दी, तो डाल दो जितने चाहो स्पीड ब्रेकर, थोड़ी धीरे रफ्तार से जाएगी। अरे नहीं साहब, जब एक फर्स्ट वो आता है ना पैरा ग्राफ खत्म, तो उसे उस पैरा में जो बात कही है उसका समापन करना पड़ता है, और फिर नए पैरा के नए दूसरे का शुरू करना पड़ता है, तो समापन और शुरू करना सबसे कठिन काम है। और तुम वैसे तोड़ दो पैरा, लिखित किताब तो लिखी तोड़ दो मिलने, और तुमने पैरा तोड़ के घुसेड़ दिए चार कुछ नाम उसके बीच में, हेडिंग भी उल्टे सीधे लिख दिए, कोई जब उनका भाव ही नहीं है, कहां खत्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं टूटे जाते हैं। एक पैरा तुम पेड़ के पैरा तोड़ो तो हम बता देंगे कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं इसमें, ऐसा नहीं चाह जहां तोड़ दिए ऐसा अपने कहा बड़े बड़े पैरा हैं, तो उसका एक नियम जहां फुल स्टॉप नहीं लगा रहा उसने वहां आपने पैरा तोड़ दिया, जहां उस सामने वाले ने फुल स्टॉप नहीं लगाया था तहां तुमने अध्याय बदल दिया। सम्य दर्शन ज्ञान चौदह प्राणी मोक्ष मांगा तो सम्य दर्शन पे अध्याय बदल दो, सम्यक ज्ञान में अध्याय बदल दो, सम्यक चारित्र में अध्याय बदल दो। ऐसे ही तो करोगे ना कि क्या जहां अध्याय बदल दोगे, क्या इतना 8 पेज हो गए तो अध्याय बदल दो। पहले होता था ना 32 अक्षर हो गए तो एक श्लोक हो गया, वहां लगा दो फुल स्टॉप लाल निशान। उसमें आ एक तरफ रह जाता था, बा एक तरफ। ऐसा ही इस साहित्य में भी होता है, तो वो पेरे बदले जाते हैं, हरेक का में उसका अर्थ है। यदि आप पढ़ना जानते हैं सही, तो पढ़ना जानेंगे तो लिखना जानेंगे, लिखना कैसे जानेंगे, है ना। तो हरेक चीज का अर्थ है। देखो यद्यपि यहां आचार्य अमृत चंद्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचनसार के प्रतिपाद्य का अनुशीलन अभीष्ट है। अब देखो एक क्या समस्या है, मैं रोजीना संकल्प करता हूं कि आज खत्म कर दूंगा और दोनों ही खत्म किए बिना रह जाता है। फिर सुनो कि अभी हम प्रवचनसार का अनुशीलन लिख रहे हैं, अब इतनी बात आई ना कि तीन टीकाएं हैं अमरचंद की, जयसेन की। तो अब ये नक्की करना पड़ेगा कि तुम तो दोनों टीकाएं लिखोगे कि एक क्या आधार बनाओगे मुख्य, जैसे कि हमने बनाया दोनों टीकाओं को आधार बनाया, एक को बनाया अमृतचंद को, तो अमृतचंद को आधार बनाएंगे तो वो अमृतचंद की हर बात लिखेंगे और जयश्रेन की वो बात लिखेंगे जो अमृतचंद ने ना लिखी हो। यदि उसका अर्थ पहले बता दिया गया है तो वो बात हम लिखेंगे ही नहीं, तो आप हम छोड़ दिया जयसेन को। अरे भाई ऊपर आ गई ना, यदि जयसेन की टीका को मुख बनाते तो उनके में लिखी जाती वो, फिर अमृतचंद के में नहीं आती। तो ये भी नक्की करना पड़ेगा हमें, यहां आचार्य अमृतचंद के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचनसार का अनुशीलन अभीष्ट है। इतनी बातें तो पूछनी पड़ेंगी ना, तय करनी पड़ेंगी ना, आपको टेबल पे पेन हाथ में लेते ही ये सब बातें तय करनी पड़ेंगी क्या नहीं। इस कारण तत्व प्रदीपिका को मुख्य आधार बनाकर ही अनुशीलन किया जाएगा, तथापि आवश्यकतानुसार यथा स्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, उसकी टीका नहीं लिख रहे हम। प्रयत्न रहेगा कि कोई नया प्रमेय अनुल्लिखित न रह जाए, मैंने कोई नई बात आए उसमें और छूट जाए ऐसा ना हो, वो हम कोशिश करेंगे। तो आप एक किताब पढ़ोगे और दोनों किताबें का स्वाध्याय आपको हो जाएगा, अमृतचंद का भी और जयसेन की टीका का भी। अब हम आपको क्या बताएं कि इसमें क्या विशेषता है, और तुम इसलिए लो पहले पुरानी वाली ये नहीं लो और ये लो टीका, तुम्हें क्या बताएं, तुम बता सकते हो तो हम सब देख लो, तुम देखो अपने आप ये बातें, निर्णय करो। अब उत्तम चंद जी ने यह किया कि भाई दोनों का करेंगे, क्योंकि ये लिखा कि यदि अमृतचंद का करते हैं तो कहीं डॉक्टर साहब की टीका है ही तो हम पढ़ेंगे क्या, कोई हमारी पढ़ेगा क्यों, लेकिन इसलिए पढ़ेगा क्योंकि जयसेन का नहीं है उसमें, इसलिए अपने ले लो। तो आप हमसे कोई कहेगा तो तुम्हारी को कौन पढ़ेगा, जब दो ही एक साथ मिल जाएंगी तो क्यों, नहीं कि हमारी को पढ़ेगा उसको नहीं पढ़ेगा, क्यों, माल तो हमारी में पूरा आ गया और उसमें क्या बाकी तो बोझा बड़ा है, हमारी इतनी सी है, इतनी मोटी है, दो किलो लादना नहीं हो और एक किलो लादना हो और पूरा मेडल आ जाए तो पड़ेगा, आया समझ नहीं नहीं। अरे आज बेचो वो जो लेखक का अंतर होता है वो तो हो गई, लेकिन और भी उसके लाभ समझ में आए कि नहीं आए, नहीं तू तो हम तुम्हें सब रख देंगे, सब रख दोगे लेकिन इतना बड़ा बोथन्ना हो जाएगा तो वो डिक्शनरी लेके चलेगा ना साथ में, फिर वो इसको क्या करेगा। हमसे लोग कहते आप क्या करते हो, पहली किताब 200-200 पेज में छपा देते हो, फिर इकट्ठी 400 पेज के छपा देते हो, फिर 400 पेज जो फिर 250-150 करके छपा देते हो। ये क्या कहते हो? बार बार लोगों से कुछ आते कि लोग खरीद ले रहे हैं। क्यों? किताब एक ही घर में चार पहुंच जाए। अरे बनिया हुआ तुम क्या सोच सकते हो? अधिक माल हम तुम्हारे माल बेचने के लिए अपना दिमाग खराब करेंगे, किताब खराब करेंगे उसके तो। अरे भाई हमारे पास ऐसे बहुत मिलते हैं कि वो प्लेन में सामने बैठे थे तो फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर कहाँ रखें? ऐसा करते थे, परेशान होते थे तो दूसरी जगह लाए। हमारे पास कितनी हाथ में दर्द करने लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि चार चार बाइंडिंग में करो ना। तो जब दूसरा अध्याय पढ़ना है तो इसे उठाओ, तीसरा अध्याय पढ़ना हो तो उसे उठाओ। हम जो जाते हैं रास्ते में ले जाते हैं, जब तक 10 अध्याय रहते हैं, एक एक के पेज ऐसे अलग पेंटिंग किए हुए रहते हैं, जब वो पढ़ना होता वो पढ़ते हैं, जब वो पढ़ना होता वो पढ़ते हैं, अलग से सुविधाजनक। तो वो जो कच्ची बाइंडिंग की जाती है उसका एक उद्देश्य होता है, पक्की बाइंडिंग की जाती है उसका दूसरा उद्देश्य होता है, उसे लाइब्रेरी एडिशन कहते हैं, कि लाइब्रेरी में पढ़ी कम जाएगी, रखी रहेगी, तो अधिक दिनों तक रखी रहे, खराब ना हो जाए, और एक किताब बहुत पढ़ी जाएगी है? तो बार बार खुलेगी, तो कागज भी उस हिसाब से लगाया जाता है। लाइब्रेरी एडिशन का कागज अलग आता है बाजार में, इतनी बोलोगे तो वो तुम्हें बता देगा ये है, है? मार्केट एडिशन का, पॉकेट एडिशन का, पॉकेट एडिशन का मन बिल्कुल सड़ा गला, साल दो साल में ही सड़ जाए, एक दफे पढ़ ले वो जो खरीदे, वो एक दफे पढ़ ले वे और फिर वो फेंक दे अखबार, मुझे बोलते अखबारी। अब आजकल समय साल में लगने लग गया है अखबारी कागज, और अखबार वाले में वो कितना बढ़िया बढ़िया ग्लेज क्या बोलते आर्ट पेपर लगता है। तो ये भी सर नक्की नहीं, ये नहीं लगना चाहिए उसमें, ये बर्बादी है देश की, है ना? वो एक दफे पढ़ करके फेंक देना है तो उसमें वैसे कागज लगना चाहिए, और ये तीन पीढ़ी तक चलना है उसमें ऐसा लगने अलग लगना चाहिए। वकीलों की जो होती है वकालत की किताबें जो सिर्फ शोभा ही बढ़ाने की होती हैं, एक वकील दूसरे वकील से लाइब्रेरी खरीदता है और वो जिंदगी में सफाई करता है, एक नहीं 90% किताबें वो वकील सारी जिंदगी निकल जाता है और खोलता नहीं है, तो उनकी वो दिखने वाली जिंदगी बढ़िया होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये सब चीजें इसके पीछे हैं जो इसमें मैंने लिखी हैं थोड़ी सी। यद्यपि आचार्य अमृतन के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचन सार के प्रतिपादक का अनुशीलन अभीष्ट है, समझ में आ गया है? इस कारण तत्व प्रदीपिका को मुख्य आधार बनाकर ही अनुशीलन किया जाएगा, तथापि आवश्यकता अनुसार यथा स्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। प्रयत्न रहेगा कि कोई भी नया प्रमेय अनुल्लिखित न रह जाए, है ना? और इस अनुशीलन में आचार्य अमृतचंद के तत्व प्रदीप का की पांडे हेमराज जी के ब्रजभाषा में की गई टीका का पंडित मनोहर लाल जी के आधुनिक हिंदी अनुवाद और पंडित हेमंत लाल जेठालाल शाह गुजराती के अनुवाद का पंडित परमेश्वरी दास जी के हिंदी अनुवाद और कविवर वृंदावन दास जी के प्रवचन सार का परमागम और आध्यात्मिक सत्र कांजी स्वामी के प्रवचनों का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इतनी अच्छी कैसे बन गई, इतने मसाले डाले हैं सर। और ये सब लिखना बैठने को शुरू किया उस दिन तय कर लिया जाता है। क्यों, क्या क्या डालोगे सब्जी में? अब बनना छुकन तो दो फिर देखेंगे, डालने लगेंगे अंत तक देख लेंगे क्या है? ऐसा नहीं होता है। वो जो रसोई में घुसने के पहले जाकर वो देख लेती है कि वो सब चीजें हैं कि नहीं, वो मसाले मसाले हैं कि नहीं है? तब काम होता है नहीं नहीं होता है। इसके इनके अतिरिक्त तत्व संबंधी अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुसार यथा स्थान बिना संकोच किया जाएगा। इतना ही में बंधे नहीं है, और भी चीजें मिल जाएंगी हमें बीच में कहीं इसके बारे में बताई गई हुई, तो हम वो भी डालेंगे। लेकिन क्या 10 चीजें मिल गई तो कैसे निर्णय करोगी कौन डालना कौन नहीं? वैसे ही डालते तो इतनी मोटा बोतल ना होता है, तो क्या डालना क्या नहीं डालना ये निर्णय काय के आधार पर करोगे? ये उसका साला है, ये उसका बहनोई है, ये उसका, इसके आधार पर करोगे? उन्होंने ये कहा इससे बरस ले जाए, कभी तुम्हारी किताब में उसका भी एक किताब का उल्लेख कर देना, जो आएगा आपके नाम पढ़ते पढ़ते तो उसका ये भी पंडित है, डाल देना कहीं ना कहीं, कहीं कहीं घुसेड़ देना, हाँ तुम चिंता नहीं कर मैं डाल दूंगा। क्या देखो गाय के अनुसार उपलब्ध साहित्य का इनके अतिरिक्त तत्व संबंधी अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुसार। और हम जो समझाना चाहते थे वो पूरी बात समझ में हो गई, अब काय वजह वजह से कूड़ा करके उसमें भर दो। और जरूरत आवश्यकता है तो हम जरूर डालेंगे, माने तुम रख दो तुम्हारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो उपयोग हो जाएगा और नहीं पड़ेगी तो नहीं होगा, ये पक्का समझ के जाओ यहां से। तो वो शास्त्र के प्रति ईमानदार है, क्या कितनी सीधी सच्ची बात है, तेरी सिफारिश माने और शास्त्र की नहीं माने, शास्त्र की उपयोगिता के आधार से वो चीज वहां जरूरत होगी तो दी जाएगी और नहीं होगी तो नहीं दी जाएगी। आजकल तो ऐसा होता है कि ये किताब में सोंठ मिर्च पीपर की दवाई लिख देते हैं, इसलिए आज के लोगों को बहुत काम आती है, हैं? तो इसमें उसकी सिरदर्द की दवाई लिख देते हैं, मैंने इस किताब में जरूर लिख देना सिरदर्द की दवाई, क्योंकि इस किताब के पढ़ने से सिरदर्द नहीं रहे, सिरदर्द मेरे बना नहीं रहेगा, तो हमारी वो क्यों लिखता है, हमारी में सिरदर्द किसी को होने वाला नहीं है। देखो समय सार अनुशीलन के निर्विघ्न पूर्ण हो जाने के उपरांत उसके अनुशीलन से प्राप्त अभूतपूर्व आध्यात्मिक लाभ और अद्भुत आनंद के कारण ही प्रवचन सार का अनुशीलन करने का प्रयास आरंभ किया जा रहा है। यद्यपि समय सार के अनुशीलन करते समय भी उसके उपरांत प्रवचन सार के अनुशीलन करने का विकल्प निरंतर चलता रहा है और आत्मार्थी बंधुओं से भी इस उपक्रम के लिए सतत प्रेरणा मिलती रही है, तथापि संयोगों की क्षणभंगुरता ध्यान में आते ही तत्संबंधी विकल्प तरंगे विलीन हो जाती थी, किंतु आज इस उपक्रम को आरंभ होता देखकर चित्त आह्लादित है। आ गया होगा अर्थ समझ में, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समय सार अनुशीलन के समान ही यह प्रयास भी मुझे लाभप्रद ही होगा, अन्य साधारणी आत्मार्थी बंधुओं को भी उपयोगी सिद्ध होगा। अब शुरू होगा अमृतचंद के कार्य का, अब प्रवचन सार नहीं तत्व प्रदीप का अब शुरू होगी, अभी तो प्रवचन सार तो हुआ ही नहीं, तत्व प्रदीप का भी नहीं हुई, अब तत्व प्रदीप का अपन अब आएंगे लौट के जब तब चलेंगे।